ओम शांति। कहा विषय क्या है? हमने कहा व्यस्त जीवन में स्वस्थ मन, कि व्यस्त होते भी मन कैसे मोज में रहे, बाबा कैसे आपको मोज में रखते हैं और आप कैसे मोज में रहते हैं। तो अभी निर्वैर भाई हम सभी से अपने ये अनुभव शेयर करेंगे। निर्वैर भाई।
अच्छा, ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए फिर, दादी जी, जानकी दादी जैसे कहती हैं, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, तो स्वस्थ मन रखने का महामंत्र क्या हुआ है? ओम शांति। मन ही सब बातों का, क्या कहें, आधार है, जड़ है, बीज है। मन में कोई बात ना आए तो कुछ कर्म में नहीं आती है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसका ओरिजिन कहो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? मन से होती है। तो मन सदा स्वस्थ रहे उसका सबसे सहज तरीका बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने और सब बातों को नहीं टच किया, ये नहीं कहा कि आप हठ योग करो, धीरे धीरे उसके बाद कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, फिर आप समाधि में जाएंगे, जो आम तौर पे सब अष्टांग योग करने वाले बताते हैं। क्योंकि बाबा को मालूम है कि मेरे सभी बच्चे, खास उसमें बहने माताएं, सभी कोई हठ योग तो कर नहीं सकती, और बाबा का योग तो अन्य योगियों से न्यारा ही होगा। बाबा वही चीज नहीं सिखाएंगे जो और सिखाते हैं, और सिखाएंगे भी वो चीज जिसमें सर्व प्राप्ति हो जाए। इसलिए जो योग स्वयं भगवान आकर सिखाते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम जरूर हैं, परंतु उसमें सबसे श्रेष्ठ जो नाम है वो है सहज राजयोग। सहज राजयोग, जिस योग से देवताओं ने देव पद को प्राप्त किया, ये गीता में भी आता है। अब आप सोचिए, हैं माताएं बहने, हैं हमारे पांडव भाई, कारोबार में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने खास पूछा कि ये तो टॉपिक पहले, कुछ दिन पहले बिजनेसमैन, बिजनेस और इंडस्ट्री के जो भाई आए हुए थे उनके लिए रखी गई थी, अभी जो भट्टी है विशेष माताओं की, खास दादी इतनी महिमा करती, आज भी सुबह को मधुबन में आई तो बहुत महिमा कर रही थी कि 4000 से ऊपर बहने माताएं पहुंची हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि शांति वन में कोई है या नहीं है, इतनी मौन भट्टी पावरफुल चल रही है। तो मुझे बताया रत्नमयनी दादी ने भी और शारदा बहन ने भी कि माताएं तो सबसे ज्यादा बिजी रहती हैं, दिन रात बिजी रहती हैं, इसलिए उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अब बात भी ठीक है, हर तरह से बिजी रहते हैं, तो बिजी जो बहुत रहते हैं उनको इजी रहना जरूरी है। अगर बहुत बिजी रहें, इजी नहीं रहेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे, मन को खिंचाव पड़ता रहेगा और उसका असर फिर स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए बाबा ने पहले से ही कहा कि जी खुश तो जहान खुश। माताएं खुश नहीं होंगी तो बच्चे भी खुश नहीं होंगे, पति भी खुश नहीं होंगे तो सारे घर में क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगी। इसलिए बहुत बहुत बाबा ने, क्योंकि सबसे स्याणा समझू कहो, बुद्धिवानों का बुद्धिवान कहो, कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, और उसके साथ साथ शास्त्रों में आता है जब कभी कोई भी देवताओं की अपने भक्तों के प्रति या असुरों के साथ कोई अनबन हुई, कोई बात हुई, तो उसके लिए मत लेने के लिए किसके पास जाते थे? पितामह के पास। ब्रह्मा को पितामह कहते हैं। अभी समझ में आता है कि बहुत ही अनुभवी रथ बाबा ने लिया, हर बात के लिए बहुत स्याने समझू अनुभवी, हर बात का उत्तर बाबा के पास। उस हिसाब से बाप दादा ने हम बच्चों को जो राह दिखाई है, जो राह वो है सहज राजयोग का। और सभी जानते हैं हम किस लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई का लक्ष्य ही बहुत ऊंचा है। कहने में बड़ा सहज आता है कि मनुष्य से देवता बनना है, लेकिन भक्ति में इसकी महिमा और रूप से की हुई है। अगर माताओं को सामने देखें, बहनों को देखें, तो एक कहावत है, हे राधे, ऐसा कौन सा कर्म किया जो तेरे को श्री कृष्ण जैसा पति मिला? सुना है आपने? तो अभी माताएं कौन सा पुरुषार्थ कर रही हैं? ऐसा पति पाने के लिए जो श्री कृष्ण जैसा है। तो पति श्री कृष्ण जैसा, तो पत्नी कैसी होंगी फिर? राधे जैसी होनी चाहिए ना। तो ऐसे महानतम, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनने के लिए, क्योंकि देवताओं की ये महिमा है, ऐसा बनने के लिए कौन सी ऐसी बात? हठ योग से तो ये बन नहीं पाते हैं। बहुत लोग हठ योग सीखते हैं, कितने दुनिया के अंदर योगासन सिखाने वाले हैं और योग आश्रम बने हुए हैं, नित नए आश्रम खुलते भी रहते हैं। लेकिन मनुष्य को, जो मनुष्य इस समय पतित हैं, जो इस समय पुजारी हैं, उनको पावन पूज्य देवता बनाना, उसका तो एक ही मार्ग है, सहज राज योग, जो स्वयं भगवान आकर के सिखाते हैं। और वो योग हठ योग नहीं है, उसमें कोई प्राणायाम आदि करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। बात सिंपल है, जो पहली बात शुरू की कि मन की बात है, तो उसको बाबा ने कहा, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, बस ये है योग। अब मन बाबा में लगाना कोई मुश्किल तो नहीं लगता ना? कि मुश्किल लगता है, क्योंकि इस बात के ऊपर ही सारा मदार है हमारे पुरुषार्थ का। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कारोबार करने में मन लगा रहता है, सारा दिन बिजी रहे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जब याद में बैठते हैं, भक्ति में भी ऐसे कहते हैं, जब पूजा में बैठते हैं, उस समय मन पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। और उसको गीता में कहा है कि मन एक हवाई घोड़ा है, सेकंड में कहां से कहां भाग जाता है। सबसे ज्यादा महीन चीज वो है मन के संकल्पों की। अगर किसी को ये आर्ट आ जाए मन मना भव करने का, तो वो मन को जीत लेता है। इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में, शायद आप लोगों को सुनाई या नहीं सुनाई, बाबा की देखभाल करने के निमित्त हमारी संतरी दादी और लच्छू दादी थी, तो लच्छू दादी के पास अभी भी एक छोटी सी डायरी है बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, जिसमें बाबा शिव बाबा तो 1936-37 में आए, लेकिन वो 1932 की डायरी है। और उस डायरी के अंदर बाबा ने कुछ बातें नोट की हुई हैं और उसमें एक डायलॉग है, आत्मा का अपने मन के साथ डायलॉग। तो पहले जैसे ड्रामा बनाते थे, एक राजा था उसका एक वजीर था, इस तरह से, तो बाबा ने उस ड्रामा में भी जो लिखा हुआ है, तो आत्मा को बादशाह बनाया और मन को वजीर बनाया। और बादशाह के रूप में जैसे बाबा को शिव बाबा का आभास हो रहा हो अंदर से, तो उस नाते से बाबा ने कहा मन को, हे मन वजीर, तुम मुझे बहुत भटकाते हो। तो मन वजीर कहता है, हे राजन, मैं जो कुछ भी करता हूं आपके सुख के लिए करता हूं, आपके आपके खुशी के लिए करता हूं। तो आत्मा बादशाह कहती है कि नहीं, मैंने एक बादशाह को देखा है, उसका वजीर बहुत फरमा बरदार है, वफादार है, तुम मेरे साथ गद्दारी करते हो, वफादारी नहीं करते हो, कहां कहां भटकाते रहते हो। तो इस तरह से पहले से बाबा ने भी शिव बाबा के आने से पहले किस तरह से अपने आप को तैयार किया हुआ, वहां भी देखने में आता है कि मन को वश करने के लिए कितना प्रयत्न किया हुआ है। लेकिन उन सब बातों से जब नहीं हुआ, तो शिव बाबा ने आकर के सहज राजयोग का रास्ता दिखाया। और बाबा ने जब अपना परिचय दिया, तो परिचय देने के बाद कहा कि आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ मन को मेरे साथ लगाओ। इसलिए जितनी साकार मुरलियों में आप देखेंगे, बहुत ज्ञान बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है, बहुत एक सागर की तरह है, लेकिन सब कुछ सुनाते हुए बीच बीच में बाबा, जैसे मां ये श्रीमद् भगवद गीता में भी बार बार आता है मन मना भव की बात, तो बाबा भी बार बार एक बात पे जोर देते हैं, अच्छा और सब बातों को छोड़ करके मुझे याद करो, स्वयं को आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो ये है मूल मंत्र, कहो इसको, या तो सहज राज योग का मुख्य आधार कहो। जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं किया, अभी यहां है आपको, अभी तक जो आपको एड्रेस कर रहे हैं ना, माताओं बहनों भाइयों, इससे थोड़ा ऊपर जाने की बात आ गई। अगर माता समझे अपने आप को, तो कौन सा स्वरूप सामने रहेगा? बच्चों की पालना करने वाली रहेगा ना। और भाइयों को अगर पिता के रूप में कहें, तो उसको रहेगा भाई मैं तो क्रिएटर हूं, छोटे से परिवार का रचता हूं। लेकिन बाबा ने इसलिए इनसे हटाया, जो आप यज्ञ की हिस्ट्री सुनेंगे शुरू में, कितने परिवार इकट्ठे आकर के रहे, 350-450 भाई बहने इकट्ठे थे, अनेक परिवार इकट्ठे आकर के रहे, लेकिन सबको एक ही मंत्र दिया कि आप आत्मा हो, आत्मिक दृष्टि से एक दो को देखो। तो रतन मोहिनी दादी अपने माताजी को माताजी नहीं, उनको आत्मा रूप से देखे, मम्मा की मां बेटी को कहे मम्मा, बाबा की पत्नी बाबा को कहे बाबा, इसलिए नहीं कि नारायण का बाबा या कृष्ण किशा का बाबा, नहीं निर्मल शांता का बाबा, उस ख्याल से नहीं, परंतु दृष्टि बदलने के लिए, स्मृति बदलने के लिए और व्यवहार बदलने के लिए, मनमना भव होने के लिए पहला पहला निश्चय किया मैं आत्मा हूं। अब ये है सबसे बड़ी बात। मैं अभी इधर आने से पहले एक मुरली देख रहा था, साकार मुरली। बाबा ने कहा ये सबसे पुरानी बीमारी है, 63 जन्म से अपने आप को शरीर समझना, जीवात्मा समझना। जीवात्मा समझे तो भी ठीक है, पर आत्मा निश्चय वो नहीं रहता, शरीर का भान ज्यादा रहता है। इसका बहुत अभ्यास चाहिए। अगर स्वस्थ मन रखना है तो मन किसका हिस्सा है? ये तो पहले लेसन में आता है कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा की अपने सूक्ष्म इंद्रियां कहो या उसके सूक्ष्म फंक्शन है, लेकिन वो बात भूल जाती है, मोटे रूप से ही फिर याद करते हैं। बाबा को भी याद करने के लिए बाबा के रूम में बैठेंगे, बाबा के चित्र के आगे बैठेंगे, ठीक है इतनी महीनता में नहीं जा सकते, तो बाबा कहता अच्छा ठीक है इस तरह से भी बैठ के याद करो, कम से कम और देह और देह के संबंधों से बुद्धि तो हटी हुई है ना। लेकिन जिस योग से पास्ट का हिसाब खत्म होता है, जिस योग से आत्मा संपूर्ण पावन बनती है, जिस योग से आत्मा में फिर से अपनी सर्व शक्तियां भरती हैं, जिस योग से आत्मा में फिर से उनका चरित्र ऊंचा बनता है, जिस योग से फिर से उसमें अपने दिव्य गुण धारण होते हैं, वो है जब स्वयं को आत्मा निश्चय करके शिव बाबा के साथ पूरा योग युक्त हो जाएं, ऐसा लगे कि हम बाबा के पास बैठे हैं। अब आप थोड़ा इस बात पे सोचिए कि जब हम आत्मा इस सृष्टि पर नहीं आई थी तब कहां थे, याद है? या खेल में आके खेलते 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 ऐसे इसमें व्यस्त हो गए जो मन बिल्कुल ऊपर जा नहीं पाता है, उड़ नहीं पाता है। लेकिन बाबा ने कहा है कि जब तक आप स्वयं ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, आपका अपना मन स्वस्थ नहीं होगा, आप इतने खुशनुमा नहीं होंगे, तो दूसरों को खुशनुमा कैसे बनाएंगे? क्योंकि हर एक का पार्ट क्या है, खास माताओं का पार्ट क्या है, सबको खुश रखना, सबको राजी रखना। तो अपना मन बड़ा संतुष्ट चाहिए, खुश चाहिए और लाइट चाहिए। इसलिए बाबा बार बार अभी भी याद दिलाता है आप आत्माएं लाइट स्वरूप हो, आप आत्माएं जो आपके ऊपर बोझ है ये बाबा को दे दो, आप डबल लाइट हो जाओ, ताकि डबल लाइट हो करके मेरे पास सहज आ सको। इसके लिए चाहिए बहुत अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती है कि मैं ज्योति स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। जैसे रात को स्टार देखते, तारे देखते हैं, ऐसा ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा को कोई बोझ नहीं है, लाइट को कोई बोझ नहीं होता है। लेकिन बोझ कब बनता है? जब व्यर्थ की बातें मन में सोचते रहते, जिन बातों में कोई ताकत की बात नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए शक्ति चाहिए, और जितनी व्यर्थ बातें मन में चलती हैं उतना शक्तिहीन होते जाते हैं। चाहे हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं, पोत्रियां हैं, सब है, लेकिन अगर व्यर्थ बातों में मन चलता है तो कभी भी मन स्वस्थ नहीं हो सकेगा। जिस समय बाबा को खास याद करेंगे, बाबा से रूहान करेंगे, उस समय टेम्परेरी, जैसे भक्ति मार्ग में होता है प्रार्थना के समय टेम्परेरी उस समय मन जरा टिक जाता है, उसके बाद फिर भटकता रहता है। हूबहू ऐसे ही ज्ञान मार्ग में अगर मन मना भव होकर के अधिक समय नहीं बिताते तो व्यर्थ संकल्प मन को चक्कर में डाल करके फां कर देते हैं, थका देते हैं। और सब बीमारियां आने का कारण क्या बनता है? जब बहुत थकान होती है। इसलिए सबसे पहली बात, स्वस्थ रहने के लिए बाबा ने जिस तरह की दिनचर्या बताई है, सुबह उठते ही क्या करना होगा? बाप दादा से गुड मॉर्निंग करो, बड़े मुस्कुरा करके खुशी में आकर के बाबा गुड मॉर्निंग, जिससे कि सारा सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए। और कुछ समय के लिए, यहां तो बहुत अच्छा चांस मिला भट्टी में, ऐसा चांस तो बहुत कम मिलता है ना कि सभी एक ही संकल्प लेके बैठते हैं। तो जैसे यहां अभी अभ्यास कर रहे हैं, इसको लगातार करना जरूरी है कि हर रोज सवेरे आधा पौना घंटा इस स्मृति से बैठें कि सिर्फ शांति नहीं, सिर्फ बाबा का प्यार नहीं, लेकिन हम तो बाबा के राइट हैंड हैं और विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं। इस समय बाबा ने जो हमें सेवा दी हुई है कि सारे विश्व को पावन बनाने के लिए, प्रकृति को पावन बनाने के लिए हमें सकाश देना है, तो सवेरे सवेरे उठ करके खास याद में बैठने, जिसको अमृत वेला कहते हैं, बाबा के रूम में बैठ करके, अपने घर में भी रूम बनाया होगा या चित्र के सामने बैठ करके, सिर्फ बैठ करके जुटके नहीं खाना उसमें, लेकिन ऐसा शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करें जैसे बाबा कहता है कि सूर्य के समान, सिर्फ बीज रूप भी नहीं, बीज रूप से ज्ञान सूर्य के समान बन करके सारे विश्व को सकाश देने का अभ्यास कर। उस समय आप देखेंगे कि एक तो अंदर बहुत लाइट फील करेंगे, एकदम लाइट, कोई इधर उधर की बात नहीं आएगी, मन के सामने बिल्कुल शिव बाबा की लाइट ही रहेगी और खुद भी लाइट फील करें। और दूसरा, उस समय सर्वशक्तिवान के संग का रंग लगते, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे, इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आपको अपना ही जो सकाश है सहन करना कभी मुश्किल हो जाए। जो शुरू की बातें हम सुनते हैं कि आद में माताओं की बातें खास सुनाते हैं, वो इतना उनको शिव बाबा का आभास होता था, जो लाल लाल हो जाती थी, आंखें लाल लाल हो जाती थी, तो वही बात फिर से होने लगेगी। ऐसा शक्तिशाली अभ्यास जब करेंगे, और आधा पौना घंटा तो कम से कम बैठो उसमें, उसके बाद देखेंगे कि आत्मा के जो पास्ट का हिसाब है वो सब भस्म हो गया, जैसे सारे दिन में लाइट फील करेंगे। और उसके बाद बाबा के महावाक्य पढ़ करके, थोड़े से भी पढ़ लो, उससे मन मना भव होने में और अच्छा लगेगा। हर कार्य करते हुए भी ऐसा लगेगा बाबा मेरे साथ में है जैसे, तो निरंतर योगी बनने का आपको सहज लगेगा। ऐसा अभ्यास करके देखिए, तो कुछ बातें बाबा ने जो बताई हैं उनको प्रैक्टिकल में लाना सहज लगेगा कि एक तो सवेरे सवेरे ऐसा लाइट हाउस और माइट हाउस बन के बैठ, जिससे कि आत्मा अपने भी हिसाब किताब को चुकतू करे, क्योंकि बाबा ने कहा है ये याद का अभ्यास, ये जो सहज राजयोग है इसमें इतनी शक्ति है, अगर इसको आप एक्यूरेट करेंगे तो बीमारी कोई नहीं रहेगी, तो शरीर की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। और मन तो मन मना भव हो गया, आनंद के सागर के साथ सदा लगा हुआ है, उस सागर में तैर रहा है, उसका आनंद ले रहा है, तो उसको फिर हैरानी कहां से होगी, टेंशन कहां से होगी। सबसे सहज तरीका, कई बार ऐसा होता ना, वो कहते हैं ये नींद की गोली ले लो सोने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इतना आनंद आता है इसमें, इतना सुख मिलता है कि बाद में भी आपका सारा दिन जैसे किसी को मिलेंगे, किसी को देखेंगे, किसी से बात करेंगे, तो बाबा जो मना करता जिस बात के लिए, व्यर्थ बातें ना करो, वाहियात बातें ना करो, बिल्कुल उसके लिए आपको संकल्प तक लाने के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आने की तो बात ही छोड़ो, लाना मुश्किल हो जाएगा। किसी के लिए नेगेटिव सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने मन में पक्का हो जाएगा कि जिस अभ्यास से मैं इतना ऊंच बन रही हूं, इतना ऊंच बन रहे हैं, ऐसा अभ्यास मैं छोड़ करके अब व्यर्थ की बातों में जाऊं। अभी तो बाबा ने कहा है आप इस समय सारे संसार में ऊंचे ते ऊंचे हो, वी आई पी हो, तो VVIP का जो टाइम है वो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में अगर चला गया तो वो VVIP क्या हुए। VIPs के पास तो टाइम होता ही नहीं है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट उनका इतना अमूल्य होता है। उस हिसाब से सोचें, जो बाबा कहता है आप बाबा के नूरे रतन हो, अमूल्य रतन हो, डायमंड हो, फ्लॉलेस डायमंड हो, वो कब बनेंगे अगर हम अभी नहीं बनेंगे। तो ऐसे अपने आप को थोड़ा सा स्मृति में लाके कि हम कौन हैं, हमारा इस समय पार्ट क्या है। पहले जो बीत गया सो बीत गया, पर वर्तमान समय बाबा के बच्चे बनने के नाते मेरा पार्ट क्या है। इस नाते से जब आप सोच करके अपना प्रातः काल शुरू करेंगे और दिन में भी इस पर अटेंशन रखेंगे, तो आपको बाबा के सिवा दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। और सबसे स्वस्थ मन रखने का तो वही तरीका है, जैसे आजकल वो हेल्थ को ठीक रखने के लिए कहते हैं, भाई दिन में 6 बार आप थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा, एक साथ ज्यादा पेट नहीं भरो ताकि वो भारी हो जाओ और चल ना सको, नींद ही करनी पड़ जाए, वो नहीं। उस हिसाब से देखेंगे कि शुरुआत सुबह की बहुत अच्छी करो, फिर दिन में भी बीच बीच में, कई भाई हैं अपनी घड़ी ऐसी रखते हैं वो घंटे घंटे बाद उनको याद दिलाती, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं। जब कोई भी कार्य शुरू करना है तो बाबा को उस समय एक सेकंड भी स्मृति में लाओ, बाबा आइए अभी आटा बनाने का है, थोड़ा तो मदद करो आप। इसी तरह से रोटी बनानी है, इसी तरह से सब्जी बनानी है, अभी चलो दफ्तर में चलना है, अभी चल करके कुछ और कार्य करना है, तो बाबा को साथ में भी रखना है, लेकिन बाबा कहता फिर बीच बीच में कुछ सेकंड साइलेंस में चले जाओ, एकदम सब बातों को फुल स्टॉप लगा दो, साइलेंस में जाके मन मना भव हो करके आत्मा को फिर से चार्ज करो बैटरी। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि वो अभ्यास बड़ा सहज लगने लगेगा, जिसको बाबा कहता है एक सेकंड में आप परमधाम में आ जाओ, एक सेकंड में आप अव्यक्त वतन में आ जाओ, एक सेकंड में आप आगे भविष्य दुनिया जो है सत्युग की दुनिया उसकी भी सैर करके आ जाओ, बहुत सहज लगने लगता है, लेकिन इसके अभ्यास के बिना नहीं लगता। इसलिए पहले सुबह शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, और एक एक दिन संगम युग का जो है ये हमारी अवस्था को फाइनल संपूर्ण बनाने में मदद करता है। एक दिन भी मिस किया हमने तो आप मानो कितना घाटा पड़ जाए। क्या लक्ष्य रखा है सभी ने, कौन सी स्थिति को पाना है, भट्टी में किस लिए आए हैं। कई बार तो सुनने को मिलता है शायद ये लास्ट भट्टी होगी, लास्ट नहीं है, भट्टियां तो होती रहेंगी, आप जहां भी रहेंगे योग में रहेंगे वहां भट्टी होगी और क्या होगा। लेकिन इस बात को अगर हम समझ लें कि ये मौका है, अभी जैसे कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, इसी तरह से आप मानो कि ये संगम युग के ये जो सुहावने क्षण हैं ये हाथ से ना चले जाए, इनका पूरा सदुपयोग हो, और इनके सदुपयोग के फलस्वरूप हम अपनी अवस्था को इतना ऊंचा बनाते चले कि अंत समय वो चेहरा चाहिए जिसकी मूर्ति गढ़ी जाएगी। देवी देवताओं के चेहरे जो है ना, उनके जैसा चेहरा और किसी का नहीं बनता मूर्तियों में। सन्यासियों का बनेगा तो बहुत आंखें बंद करके बनता है उनका। दूसरे भी किसका मेडिटेशन का बनाते हैं, चाहे बुद्ध का है चाहे और किसी का है, वो भी बहुत सीरियस रहता है। लेकिन अगर खुशनुमा चेहरा देखना हो, किसका देखेंगे? देवी देवताओं का। तो देवी देवताओं का चेहरा बनाने के लिए ऐसी मूर्ति जो घड़ी जाएगी या चैतन में सत्युग में होंगे, उसका आधार है इस समय सहज राज योग को निरंतर अभ्यास करने का। बिना अभ्यास के भी नहीं होगा, ये भी ना सोचें कि ये तो सहज राज योग है, इसमें करना क्या है? नहीं, वो पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि मन मन मना भव करने के लिए मन को बहुत प्यार से, जैसे माताएं बच्चों को कितना प्यार से समझा करके धीरे धीरे बड़ा करते हैं, जब वो अपने पांव पर हो जाता है फिर नहीं उसका ध्यान देते। इसी तरह से अपने मन को भी अपने बच्ची की तरह ही ट्रीटमेंट देनी है, उसको भी ऐसा प्यार से समझाना है। नहीं बच्चू, इधर उधर भटकने से मैले हो जाओगे, इधर उधर जाने से खराब हो जाओगे, इधर उधर जाने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी ये टाइम उसके लिए नहीं है, बाबा क्या कहता है, थोड़ा तो समझ से काम लो। ऐसे ऐसे अपने मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन नहीं तो इसको आदत है 63 जन्म की, अनेक तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसका कोई अपने से लेना देना नहीं वहां भी चला जाता है। तो इसके लिए अभी, क्योंकि संगम युग पर जो भी बाबा के बच्चे हैं, भाई हैं या बहने हैं, वो यूनिक उनका पार्ट है, यूनिक माना अद्भुत पार्ट है। इस समय आम माताओं बहनों की तरह या आम भाइयों की तरह हमारा पार्ट नहीं है, तो बहुत विशेष पार्ट है, जिसके लिए लोग आप लोगों के दर्शन करने के लिए तरसते हैं। ऐसा पार्ट है जो सारे संसार को बदल के रख देता है। बाबा कभी कभी कहता है सरकार का ध्यान खिंचवाओ, आज इस समय कहीं आ जाए कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए या प्रेसिडेंट आ जाए या एजुकेशन मिनिस्टर आ जाए और आप सबको बैठे हुए देखे तो क्या समझेगा वो? कमाल है, क्योंकि कहां आए हैं। आज कुछ माताओं बहनों से जो पुराने पुराने बाबा के आदि रत्न है उनसे भी मिलना हुआ तो मुझे साकार बाबा के दिनों की बात याद आ गई। वो गुड़गांव की माताएं आती थी, कुछ अनपढ़ ट्रेन में आती थी और टीटी उनसे पूछता था, माताएं कहां जा रही हो? कि हम माउंट आबू ईश्वरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो समझते थे शायद वहां कोई यूनिवर्सिटी होगी, इनके बच्चे पढ़ते होंगे या पोतरे पढ़ते होंगे, तो उस हिसाब से पूछते। कहते नहीं, हम खुद पढ़ने जा रही हैं। तो ये तो अद्भुत यूनिवर्सिटी है बाबा की, जिसमें माताएं बहनें बूढ़ी माताएं सब। दादी मेरे को फोन पर सुनाती थी, अरे भाई देखो तुम्हारी बोली बोली माताएं बहुत आई हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब भोली भोली माताएं नाम सुनता हूं तो भोला बाबा सामने आ जाता है, क्योंकि बाबा बहुत प्यार से माताओं को कहते थे, देखो आप भोली भोली माताओं के लिए भोला बाबा खास आया, क्योंकि आप आधा कल्प से थक गई हो। कल्प से नहीं कहता था, सत्युग त्रेता तो आनंद लिया, तो आपकी थकान दूर करने के लिए बाबा आया है, आपको फिर से अपने नैनों पे बिठाने के लिए आया है, फिर से आपको वापस ले चलने के लिए आया है, ऐसे प्यार से समझा करके। तो वो माताएं उन लोगों की ट्रेन में सेवा करती थी, नहीं हम तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, और फिर उनके मुख से थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान सुनते थे तो लोग चकित रह जाते थे कि ऐसी भोली भाली माताएं, अनपढ़ माताएं, और ये इतनी ऊंची बात सुनाती। तो बाबा को ये सबसे अच्छी बात लगती थी कि माताएं बहनें इनका जो निश्चय है बाबा में, चाहे सारा ज्ञान पूरा समझे ना समझे, लेकिन जो निश्चय का है इनके अंदर विशेषता है, ये बहुत ऊंची बात है। तो निश्चय में कौन सी चीज समाई हुई है? विजय समाई हुई है। आपकी इस बात को शांति स्तंभ पर खास लिखा गया है, निश्चय में विजय। लेकिन साथ साथ फिर निश्चय के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बनना है। सर्वगुण संपन्न, ऐसा भी नहीं अभी तक थोड़ा ये बाकी है, अभी तक थोड़ा बाकी है, नहीं। जैसे समय नजदीक आ रहा है तो समय को देखते हुए भी अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए निरंतर योगी बनना जरूरी है। हम सबके सामने एग्जाम्पल जो है, आप देखिए बाबा को, मम्मा को, दादी है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, उसके पहले साथ में दीदी थी और दादियां थी, या भाई भी हुए विश्वकिशोर विश्व और आनंद किशोर, आज दादा विश्व रतन है, ऐसे ऐसे बड़े भाई जगदीश भाई हुए, सबके अंदर कौन सी बातें देखी आप? अगर देखा हो, सुना हो, मिले हो, अच्छा उनके बारे में भी सुना हो। मुझे तो सबसे पहले जब आज से 43 साल पहले ज्ञान में आए तो ज्ञान भी अच्छी तरह से समझा, लेकिन उससे ज्यादा तो मुझे लगता था कि ये हमारी जो बहने हैं, खासकर जो शुरू की भट्टी से निकली हुई, जो हैदराबाद, सिंध और कराची से निकली हुई, वो दुनिया से बिल्कुल न्यारी लगती थी। उनके बोलने में इतनी मिठास जो इस दुनिया में कोई मिले ही नहीं। कितने रॉयल घराने के लोगों, वो भी इतना मीठा नहीं बोले। और उनका निस्वार्थ प्यार, साथ साथ इतनी उनके अंदर वो क्या कहें, उनके वाइब्रेशन जो हैं, उनके प्रकंपन इतने पवित्र, और ऐसा मन होता था इनसे दूर जाने में कोई फायदा नहीं, इनके पास थोड़ा थोड़ा भी बात सुनो इनसे। और जब बाबा से मिले थे, मम्मा से मिले थे, तो दिल होती थी बस यही इनके पास ही बैठे थे। बाबा को मुश्किल तो होती होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि और कार्य भी होते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या कहना चाहता हूं कि हम आत्माओं को जहां भी सतो प्रधानता होगी, जहां सात्विकता होगी, वहां मन ऑटोमेटिकली खींचता है। ऐसे ही मानो कि अगर हमने और आत्माओं की सेवा करनी है, और आत्माओं को बाबा के नजदीक लाना है, और उनको उनका वर्षा मिलाना है, उनका अधिकार जो है सतयुगी दैवी स्वराज का वो दिलाना है, तो हमें अपने जीवन को सतो प्रधान बनाना चाहिए। जितनी सतो प्रधानता अपने जीवन में आएगी, जितना आत्मा सतो प्रधान बनेगी, उतना वो बाबा के समान मैग्नेट की तरह सब आत्माओं को खींचे। ये बहुत बड़ी सेवा है। चाहे शब्दों से हम इतना ना कर सकें, चाहे धन से इतना ना कर सकें, चाहे हम कर्म से भी इतना ना कर सकें, लेकिन आत्मा अगर याद के बल से सतो प्रधान बन जाती है तो वो बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनती है। और वास्तव में सतयुग की दैवी स्वराज के अधिकारी ऐसी आत्माएं बनती है। स्वस्थ मन रखने के लिए कुछ एक बातों की विशेष अटेंशन भी चाहिए। एक तो पहला अटेंशन बताया आपको, बार बार सदा स्वास्थ्य प्रदान करने वाले बाप के साथ मन मना भाव होना। दूसरा, बाबा की शिक्षाएं हैं कुछ। बाबा एक बात कहते हैं, सच तो बीठो नच, सिंधी में कहते हैं। कि जितना सत्यता पर चलते हैं, एक तो सत्य को जान लिया, सत्य बाप को जान लिया, सत्य ज्ञान को जान लिया, सत्य मार्ग को जान लिया, लेकिन अपने व्यवहार में जितनी सत्यता होगी उतना मन टेंशन से दूर रहेगा, व्यर्थ से दूर रहेगा। इसलिए इस बात का भी बहुत अटेंशन चाहिए। दूसरा है दूसरों को खुशी बांटो तो आप सदा खुश रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी के बारे में उसके पीठ के पीछे चुगली करते हैं तो भी मन दुखता है। तीसरा है, बाबा ने खास, मैं अभी आने से पहले जो मुरली पढ़ रहा था उसमें एक बात कही, कुछ भी हो जाए, ये ब्राह्मणों की धारणा की बात है, कुछ भी हो जाए क्या नहीं करना है, रोना नहीं है। ये है सबसे बड़ा इम्तिहान, पास होना है इसमें, क्योंकि घटनाएं तो रोज घटती हैं। लेकिन अगर बाबा के साथ मन लगा होगा तो साक्षीपन का अभ्यास होगा, हर बात को साक्षी होके देखेंगे, और जितना साक्षी होकर के देखेंगे उतनी सहन करने की शक्ति ज्यादा आएगी, भावों में नहीं बह जाएंगे, और वातावरण के कारण उसका असर नहीं होगा। इसलिए साक्षीपन के अभ्यास के लिए विशेष अटेंशन रख करके, और इस बात को, बाबा की जो बात है कि देवताओं को तो मुस्कुराते रहना है, रोना नहीं है, अभी अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखो। जो आद में बाबा ने दो चित्र सबको कहा था, अपने फोटो खिंचवाओ, एक वर्तमान का ब्राह्मण जीवन का और दूसरा सज करके। हाँ, माताओं को तो खास अभ्यास है ना, शादी करने के दिन खूब सज करके आते ना, तो सत्युग की पोशाक पहन करके, हाँ, ताजबाज पहन करके एक चित्र, वो भी अपना फोटो निकाल के साथ में रखो, ताकि देखो कि अभी हम तो ऐसा बन रहे हैं, ऐसा हमारा लक्ष्य है, तो रोने की बात खत्म हो जानी चाहिए। नहीं तो सब समझते हैं ये कि माताओं की दिल बड़ी नरम होती है, बहुत जल्दी रो पड़ती, कई तो रोने को फिर अपना एक हथियार भी यूज करते हैं, थोड़ा सा रो करके मना भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी छल कपट ना हो। फिर ठीक है, कभी कभी ऐसा आ गया, लेकिन लक्ष्य क्या चाहिए, संपूर्ण बनने का, तो कुछ भी हो साक्षी होकर के रहने में वो रोना नहीं आएगा। और इसके साथ साथ जो ये वर्ष मनाया जा रहा है, ब्रह्मा कुमारी कौन सा वर्ष मना रही, सद्भावना का वर्ष, तो सबके प्रति कल्याण की भावना, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति ऐसा भाव सदा रहे मन में, जिसको बाबा कहता है अगर आपकी कोई गिलानी भी करे, आपका कोई बुरा भी करता है, तो उनके प्रति भी, उपकार करने वालों के प्रति भी आप उपकार की भावना रख करके शुभ भावना रखें, कि आज नहीं तो कल ये बातें इनके समझ में आ जाएंगी, ऐसा, और उसके साथ में उनको शक्ति का दान दें। तो ये कुछ बातों का विशेष अभ्यास करना पड़ता है मन को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि रोज कोई ना कोई परीक्षा जरूर सामने आती है। जिस दिन आप कुछ सोचेंगे आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, उस दिन वो ऐसी परीक्षा आएगी कि आपको मजबूर करेगी गुस्सा लाने के लिए, लेकिन उसको भी साक्षी होके देखना है कि ये मेरा इम्तिहान का समय है, परीक्षा का समय है, मुझे इसमें पास होना है, अब यहां पर फेल नहीं होना है, धैर्य नहीं खो देना है, तो धैर्यवत भी होना है, लेकिन अपने समय की कीमत जरूर चाहिए कि ये समय हमारा पुरुषोत्तम संगम युग का जो पुरुषोत्तम बनने के लिए है, इसको अभी व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जैसा ये भट्ठी में विशेष अभ्यास करके अपनी ऊंची स्थिति बना रहे हैं, इस अभ्यास को अभी आगे बढ़ाते बढ़ाते अपनी भी ऊंची स्थिति बने और जो कोई संपर्क में आए, सामने आए, दृष्टि उनको ऐसे दे करके एम रखनी है कि इनको भी उड़ती कला का अनुभव कर। तो ये कुछ बातें विशेष ध्यान पर रखने से अवश्य ही, जो मुझे खुद एक मैं देखता हूं, कारोबार भी कितनी भी होती है, लेकिन अगर हमारा मन हल्का है, लाइट है, बाबा के साथ लगा हुआ है, तो कार्य करने में भी बहुत स्पष्टता रहती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह से जो चाहे आप अपने घर के कारोबार में व्यस्त हैं, चाहे और सेवाओं में व्यस्त हैं, लेकिन हर बात में हम व्यस्त होते हुए भी मन को स्वस्थ रखें। सो अस्त, सो मन, आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें स्थित रहे। आत्मा का स्वधर्म तो अभी सबको याद होगा ना, शांत भी है, पवित्र भी है और आनंदमय भी है, निजानंद रूपम। वो शिव बाबा की बात भी है तो आत्मा की बात भी है। तो इस तरह से अपने सो स्मृति से और शिव बाबा की स्मृति से मन सदा स्वस्थ रहता है, सदा स्वस्थ रहेगा, ऐसी शुभ भावना अपने प्रति भी रखनी है और सभी के प्रति रखनी है, तो सदा स्वस्थ रहेंगे। और एक चीज मैंने जो अभी अभ्यास करके देखी है कुछ एक दो महीने से, कि अगर ये स्मृति हमारी अच्छी बन जाए कि हम बाबा के साथ ऊपर लाइट की दुनिया में जैसे बैठ करके, और इस शरीर को भी वो लाइट देते हैं, तो ये जो कई प्रकार के लोग ओरिकी वाले दूसरे वो कहते हैं कि कॉस्मोस से लाइट अपने में देने का, उससे अपने आप को ठीक करने का, तो वास्तव में हम लोगों को तो बड़ा सहज है, वो तो उनको पता नहीं है कि ये लाइट आती कहां से है, और हम सबको पता है कि ये तो शिव बाबा की लाइट है। तो शिव बाबा से अपने शरीर को भी अगर लाइट देते हैं तो ये भी बहुत स्वस्थ रहता है। तो ऐसे तन भी तंदुरुस्त रहे, मन भी तंदुरुस्त रहे, तो फिर क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली जब आप खुशी में हैं, आनंद में हैं, तो आप सदा खुशी बांटते ही रहेंगे। यही इस समय सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। अभी 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, दादी आके बैठी हैं तो मैं 5 मिनट ही कहूंगा, वही मेडिटेशन। दादी कहती हैं 15 मिनट के लिए अभी मेडिटेशन में, योग में बैठेंगे। तो अभी सबको एक ही लक्ष्य देते हैं कि चलो अभी अपने प्यारे परम धाम में। गीत है वो, अपना प्यारा परम धाम छोड़ करके नीचे आया है, किसके लिए आया, हम सबको परम धाम की फिर से सैर कराने के लिए। ज्यादा समय तो हम भी वहां नहीं रहेंगे, थोड़ा टाइम ही रहते हैं, फिर तो सत्ययुग में आना है, लेकिन उसका अभी से अभ्यास करना जरूरी है। जितना समय ज्यादा अभ्यास करते करते तो सहज जाएंगे अपने परम धाम। तो चलिए अभी थोड़ा टाइम के लिए 15 मिनट दादी कहती हैं, ऐसा बैठे चल करके कि बस लाइट की दुनिया में एकदम लाइट हो करके, लाइट का स्वरूप बन करके, और सारे इस विश्व को भी उस लाइट में ही समा लें।